अध्याय 19 लिपि का इतिहास। हमने पहले देखा है कि वाचिक अर्थात ध्वन्यात्मक भाषा क्षण स्थायी होती है। उसे स्थायित्व देने की भावना से ही लिपि का आविर्भाव हुआ। लिपि ने भाषा को देश और काल के बंधन से मुक्त कर दिया और भाषा की क्षण स्थायीता को चिर स्थायीता में परिणत कर दिया। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, उसी प्रकार लिपि की उत्पत्ति के संबंध में भी। भाषा के उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा के प्रसंग में हमने देखा है कि भाषोत्पत्ति को लेकर विद्वानों ने अनेक प्रकार के अनुमान किए, किंतु उनमें कोई भी सर्वथा ग्राह्य नहीं है। लगभग वही स्थिति लिपि की भी है। यूं भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज है। भाषा आज से लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई, किंतु लिपि का इतिहास 5-6 हजार वर्ष पहले के नहीं जा पाता। बात यह है कि भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है। आज भी संसार में बहुसंख्यक मनुष्य ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वे भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार के भाव या विचार उठते हैं, उन सब की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा संभव नहीं है। कहीं दर्द होता है तो हम यह भी नहीं कह पाते कि वह दर्द कैसा है। बड़ी स्थूल रूप से व्यक्त करते हैं, ये सुनकर श्रोता के कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती। ऐसे ही एक मिठाई से दूसरी मिठाई के स्वाद का अंतर बताना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लड्डू और पेड़े या गुलाब जामुन और रसगुल्ले की मिठास में क्या अंतर है, यह कौन बता सकता है। तात्पर्य कि भावों की व्यापकता और गंभीरता के साथ को भाषा में हूबहू अभिव्यक्त कर देना संभव नहीं है। जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चरित भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यदि उच्चरित भाषा की सीमाएं हैं तो लिखित भाषा की भी सीमाएं कम नहीं हैं, बल्कि उच्चरित भाषा की अपेक्षा कुछ बढ़कर ही है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल सांकेतिक रूप है। स्थूल इसलिए कि भाषा के उच्चरित रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अर्थ संबंधी जो विशेषताएँ लाई जाती हैं, वे लिखित भाषा में नहीं लाई जा सकती। कहाँ जोर से बोलें, कहाँ धीरे से, कहाँ किस प्रकार के काकों का प्रयोग करें, कहाँ स्वर ऊंचा करें, कहाँ नीचे करें, यह सब लिखित भाषा में बताना असंभव प्राय है। पाठक को अपनी ओर से ध्वनि संबंधी इन गुणों की कल्पना करनी पड़ती है। दूसरी बात इस प्रसंग में स्मरण रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का, या यूं कहें कि शब्द और अर्थ का संबंध रूढ़ है, उनमें कोई यौक्तिक और निश्चित संबंध नहीं है, उसी प्रकार ध्वनि और उसके लिखित संकेत यानी वर्ण का संबंध भी रूढ़ और पारंपरिक ही है। उदाहरणार्थ हम एक कंठ ध्वनि को क के रूप में अंकित करते हैं तो रोमन लिपि का प्रयोग था के के रूप में। ध्वनि प्रायः एक ही है, लेकिन उसे अंकित करने के ढंग में अंतर पड़ गया है। जिस तरह विभिन्न भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए विभिन्न शब्द हैं, उसी प्रकार विभिन्न लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न संकेत हो सकते हैं। आज लिपि का जो विकसित रूप हमारे सामने है, उसे देखकर लिपि के प्रारंभिक रूप की कल्पना करना कठिन है, किंतु इतिहास बताता है कि लिपि के भी विकास उपान रहे हैं जो मुख्यतः तीन हैं। पहला चित्रलिपि, दूसरा भावलिपि और तीसरा ध्वनिलिपि। पहला चित्रलिपि। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप चित्रात्मक था, अर्थात मनुष्य जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था उसका चित्र बना देता था। यदि पहाड़ को लिपिबद्ध करना हुआ तो ऊंची नीची रेखाएं खींच दी, यदि मनुष्य लिखना हुआ तो रेखाओं की सहायता से उसकी आकृति अंकित कर दी। इसी तरह वृक्षों, पशुओं, पक्षियों आदि के भी चित्र खींच दिए जाते थे। स्थायित्व देने की भावना तृप्ति तो चित्रलिपि से अवश्य हो जाती थी, किंतु उसकी अनेक त्रुटियां थी। क चित्रों की सहायता से वस्तुओं के अंकित करने में सांकेतिक अनंतता सबसे प्रमुख त्रुटि थी। जितनी वस्तुएं अंकित करनी होती थी उतने प्रकार के चित्र बनाने पड़ते थे। घोड़े के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता था और न पर्वत के चित्र से नदी का। ख, दूसरी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत बनाने पड़ते थे। संकेतों को अनंतता के साथ संकेतों का पार्थक्य अनिवार्य रूप से मिला हुआ था। ग, चित्रलिपि का यह भी एक बहुत बड़ा दोष था कि उसमें स्थान बहुत घिरता था। वह मनुष्य है या लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, सदा अधिक स्थान लेगा। ग, चित्रलिपि समय साध्य थी। किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत जल्दी में संभव नहीं हो सकता। एक दो चित्र बनाने हो तो किसी प्रकार कम चल भी सकता है, लेकिन जहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से अभिव्यक्त करना हो, वहाँ समय के अपव्यय की सहज ही कल्पना की जा सकती है। अंग, समय साध्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पड़ना अनिवार्य है। चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है तो अनुपाततः लिखने की गति में मंदता रहेगी। जितनी तेजी से आज हम ध्वन्यात्मक लिपि में लिख सकते हैं, उतनी तेजी से चित्रलिपि में नहीं लिख सकते। च, चित्रलिपि की एक और बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि उसमें केवल स्थूल वस्तुओं का ही उल्लेख हो सकता था, सूक्ष्म अथवा अमूर्त वस्तुओं का नहीं। पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु आदि का चित्र बना देना तो संभव है, किंतु प्रेम, दया, करुणा, उत्साह आदि का नहीं। चित्रलिपि में दोष तो अनेक थे, किंतु एक गुण भी था और वह थी उसकी सर्वबुद्धता। आज भी ध्वन्यात्मक लिपियों में कोई शब्द लिखने पर उसे वही समझ सकता है जो उस भाषा और लिपि से परिचित हो। उदाहरणार्थ देवनागरी में हाथी शब्द लिखा देखकर इसका अर्थ वही समझ सकता है जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा से परिचित हो। यह संकेत रूसी, फ्रांसीसी या अंग्रेजी जानने वाले के लिए अर्थहीन है, किंतु हाथी का चित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है, चाहे यह रूसी बोलने वाले हों, चाहे फ्रांसीसी, चाहे अंग्रेजी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों की तुलना में यह गुण नितांत नगण्य था। स्वभावतः मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि के अनुसंधान में अग्रसर हुई जिसमें उपर्युक्त त्रुटियां कम से कम रहें। लिपि के विकास क्रम में जो दूसरा सोपान हमें मिलता है उसे भावलिपि या विचार लिपि कहा गया है। दूसरा, भावलिपि। चित्र बनाना सरल नहीं था, सभी में उच्च कोटि की कलात्मकता नहीं होती जिससे उनके बनाए चित्र सुंदर और सुडोल हो। चित्रों के सुंदर न होने में चित्र बनाने वाली सामग्री का भी हाथ होता है। सभी चित्र बनाने वाली एक ही प्रकार का चित्र नहीं बना पाते होंगे। कलात्मक हाथों से बनाया गया पर्वत का चित्र कलाहीन हाथों से बने पर्वत के चित्र की अपेक्षा निश्चय ही बहुत भिन्न होता होगा। इस भेद के कारण ऐसी भी स्थिति आई होगी जिसमें चित्र की स्पष्टता दूर हो गई होगी और चित्र अधूरा रह गया होगा। अर्थ अथवा भाव के अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्र भले ही अधूरा रहा हो, किंतु उसमें लाघव भी आया होगा। उदाहरणार्थ कहीं ऊंची नीची रेखाओं की सहायता से पर्वत का चित्र बनाने की अपेक्षा एक आड़ी और एक सीधी रेखा खींचकर पर्वत का भाव उत्पन्न करना निश्चय अधिक सरल हुआ होगा। मनुष्य का चित्र बनाते समय केश, ललाट, कान, नाक, मुंह, गर्दन, हाथ, पेट, पीठ, कमर आदि के लिए रेखाएं खींचना पर्याप्त जटिल कार्य रहा होगा। बाद में लाघव के लिए एक एक अंक का पूर्ण अंकन न करके एक वृत्त यानी मुख, उसके नीचे एक रेखा, दोनों तरफ लटकी हुई दो रेखाएं, फिर नीचे की ओर एक रेखा खींचकर उससे दो रेखाएं दो तरफ खींच देना मनुष्य की आकृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त मान लिया गया होगा, जैसा आजकल अनेक व्यंग चित्रों में देखा जाता है। कम से कम रेखाओं से अधिक भाव व्यक्त कर देना लाघव की इच्छा का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ के पूर्ण चित्र और बाद के उसके आंशिक अंकन में वस्तुबोध की दृष्टि से निश्चय ही बहुत अंतर आया होगा और वह अंतर स्वाभाविक न होकर रूढ़ बन गया होगा। उन विशिष्ट संकेतों से उन्हीं समाजों में भाव की अभिव्यक्ति हो सकती थी जिनमें वे संकेत प्रचलित रहे हों, क्योंकि वे संकेत किसी वस्तु का चित्र न होकर स्थूल चित्राभास बन गए होंगे। इसीलिए वैसे चित्रों का बोध भावलिपि शब्द द्वारा कराया जाता है। वैसे संकेत चित्र न होकर चित्र से उत्पन्न होने वाले भाव को स्थूलता से अंकित कर देते थे। भावलिपि का एक स्पष्ट लाभ यह था कि चित्रलिपि की अपेक्षा वह अधिक संक्षिप्त हो गई। दूसरी बात यह कि भावलिपि की सहायता से कोई वस्तु ही नहीं घटना भी अंकित की जा सकती थी, क्योंकि थोड़े संकेत से अधिक बात उठाने की क्षमता का विकास हो गया। परंतु मनुष्य की प्रगतिशील बुद्धि केवल भावलिपि से संतुष्ट होने वाले नहीं थी, वह किसी ऐसी लिपि की खोज में लगी रही जिसमें ध्वनियों को अंकित किया जा सके। तीसरा, ध्वनि लिपि। लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र और भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी आदि को ले सकते हैं। कुछ लोगों ने देवनागरी को अक्षर मूलक यानी सिलेबिक और रोमन को वर्णमूलक अल्फाबेटिक लिपि माना है और अक्षर मूलक लिपि की अपेक्षा वर्णमूलक लिपि को उत्कृष्ट बताया है, किंतु ये दोनों ही स्थापनाएं अग्राह्य है। देवनागरी भी वर्णमूलक लिपि है, उसे अक्षर मूलक कहना संगत नहीं है। सिलेबिक शब्द अंग्रेजी के सिलेबल से बना है। एक सिलेबल में उतनी ध्वनियों की गणना होती है जिनका एक साथ उच्चारण किया जाता है। इस दृष्टि से अब तक तब तक चंदन तांडव का सिलेबिक रूप होगा अब तक तब तक चंदन तांडव कहने की आवश्यकता नहीं कि अब तक में अब तक सिलेबल दो ही हैं किंतु वर्ण चार हैं। इसलिए अंग्रेजी के अंधाधुन अनुकरण से नागरी को सिलेबिक लिपि मान लेना भ्रांत है। सिलेबिक लिपि की अपेक्षा अल्फाबेटिक लिपि को उत्कृष्ट कहना भी गलत है। यह बात केवल यांत्रिकता को ध्यान में रखकर कही जाती है, किंतु लिपि का संबंध केवल यंत्र से ही नहीं है। संसार की लिपियों में कौन सबसे प्राचीन है, इसको लेकर विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। वस्तुतः इस प्रश्न को लेकर अनुमान का जाल बिछ गया है जिसमें तथ्य को देखना असंभव है। हमने पीछे देखा है कि भाषा की उत्पत्ति या आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं की गई। लिपि संबंधी कल्पना भी उनसे कम मनोरंजक नहीं है। लिपियों की प्राचीनता का परीक्षण राष्ट्रीय और स्थानीय पक्षपातों से भी आक्रांत रहा है। यूरोपीय विद्वानों की एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में वे यूरोप को अग्रणी प्रमाणित करना चाहते हैं। जब वे विश्व का इतिहास लिखने चलते हैं तो उनका विश्व भूमध्य सागर के इर्द गिर्द समाप्त हो जाता है और संसार की सारी सभ्यताओं, साहित्यों, दर्शनों का मूल उच्च ग्रीक ही सिद्ध हो पाता है। इस पूर्वग्रह और पक्षपातपूर्ण दृष्टि से वस्तुनिष्ठ और तटस्थ निर्णय की आशा नहीं की जा सकती। मेरी अपनी धारणा है कि आज के प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनका स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक उचित होगा। यदि सभ्यता का विकास स्वतंत्र रूप से हो सकता है तो लिपि का विकास क्यों नहीं हो सकता। आज संसार में प्रचलित लिपियों को देखते हुए उनके चार स्वतंत्र उद्गम मानना अधिक अच्छा होगा। ये चार लिपियां हैं भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। इन चारों में इतना स्पष्ट पार्थक्य है कि इन्हें एक स्रोत से संबंध मानना असंगत है। स्वभाव है किसी लिपि के एक दो संकेत किसी दूसरी लिपि में भी आ गए हों, परंतु इतने से ही उनमें जन्य जनक भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी लिपियां निकली हैं, यह इतिहास सिद्ध है। ब्राह्मी का भी अनेक विदेशी लिपियों से उद्भव प्रमाणित करने के प्रयास हुए हैं, किंतु वे सब खोखले और निसार हैं। यह हम आगे देखेंगे। यूरोप की सभी लिपियां अल्पाधिक परिवर्तन के साथ ग्रीक लिपि का ही रूपांतर है। सामी से उद्भूत अरबी, फारसी आदि लिपियां पश्चिम एशिया के आसपास प्रयुक्त होती रही हैं और चीनी की लिपि इन सबसे विलक्षण आज भी बहुत कुछ चित्रात्मक है। कहा जाता है कि ग्रीक वासियों ने ग्रीक लिपि का विकास फिनिशिया के व्यापारियों से प्राप्त लिपि के आधार पर किया और फिनिशी लिपि के आधार के रूप में मिस्र की भावलिपि, बाबुल के कीलाक्षर और क्रीट की नियोमा लिपियों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वान जहाँ फिनिशी से ग्रीक लिपि का उद्भव मानते हैं, वहाँ दूसरे ग्रीक लिपि से ही फिनिशी का उद्भव मानते हैं। यह सब इस बात का सूचक है कि सुनिश्चित प्रमाणों के अभाव में केवल अटकलें लगाई गई हैं जिनका मूल्य अधिक नहीं है। भारतीय लिपियां और नागरी। भारत में प्राचीन समय में दो लिपियां प्रचलित थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में होता था। शाहबाज गढ़ी यानी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो खरोष्ठी में लिखे हैं। अशोक के पूर्व का कोई लेख खरोष्ठी में नहीं मिलता। वस्तुतः खरोष्ठी लिपि विदेशी लिपि थी जो उस बहुभाग में प्रचलित थी, कारण कि वह भाग कुछ दिनों तक ईरानियों के अधिकार में रहा था और उनके संपर्क के कारण खरोष्ठी का प्रचार यहाँ तक हो गया था। क्योंकि उस ओर यह लिपि प्रचलित थी इसलिए अशोक ने अपने अभिलेख इससे ही लिखवाए। खरोष्ठी नाम के संबंध में अनेक अनुमान किए गए हैं। किसी खरोष्ठ नामक व्यक्ति ने इस लिपि का निर्माण किया इसलिए इसका नाम खरोष्ठी पड़ा। ख, प्राचीन युग में लिखने के लिए जो अनेक वस्तुएं काम में लाई जाती थी उनमें गधे की खाल भी थी। खर फ्रिष्ट यानी गधे की खाल पर लिखे जाने के कारण इस लिपि को खर फ्रिष्टी कहा गया, जिससे विकसित होकर खरोष्ठी शब्द बना। ग, एक विद्वान का अनुमान है कि इस लिपि के अक्षर खर यानी गधे के ओष्ठ के समान बेढंगे होते थे इसलिए इसे खरोष्ठी कहा गया। घ, चौथी कल्पना यह है कि इब्रानी भाषा में लिखावट को खरोशीय कहते हैं। खरोशीय का संस्कृत रूप खरोष्ठ हो गया और उसे खरोष्ठी बन गई। साधक बाधक तर्कों के अभाव में उपर्युक्त अनुमानों में किसको मान्य कोटि में रखा जाए यह निर्णय करना कठिन है। खरोष्ठी की विशेषताएं। पहला, खरोष्ठी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, अतः साम्य वर्ग की किसी लिपि से उसका उद्भव हुआ होगा। कुछ विद्वान अरबी लिपि से खरोष्ठी की उद्भूत मानने के पक्षपाती हैं। दूसरा, खरोष्ठी में वर्णों की संख्या केवल 37 है जो आर्य भाषा के समस्त ध्वनियों को अंकित करने में असमर्थ है। भारत में खरोष्ठी के परित्याग का यह भी एक सबल कारण रहा होगा। तीसरा, खरोष्ठी में स्वरों तथा वस्तुओं में ह्रस्व तथा दीर्घ का भेद नहीं है जो भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं का महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए भी यह लिपि आग्राह्य शुद्ध हुई। चौथा, खरोष्ठी में संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं है। स्वभावतः संस्कृत जैसे ही संयुक्ताक्षर बहुल भाषा को लिखने में यह लिपि असमर्थ मानी गई। जैसा पहले कहा गया है, खरोष्ठी विदेशी लिपि थी जिसका राजनीतिक कारणों से पंजाब तक प्रसार हो गया था और उस भूभाग में प्रचलित होने के कारण जनसाधारण के लिए सुलभ और सुविधाजनक समझकर अशोक ने अपने अभिलेखों में इसका प्रयोग कराया। खरोष्ठी को इस देश की लिपि मानना या खरोष्ठी से ब्राह्मी का संबंध जोड़ना अयुक्त संगत होगा। ब्राह्मी शब्द की तीन व्युत्पत्तियां बताई जाती हैं। पहला, ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने से यह लिपि ब्राह्मी कहलाई। संस्कृत में ब्राह्मी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए भी होता है क्योंकि भाषा भी ईश्वरीय सृष्टि मानी गई। दूसरा, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। तीसरा, ब्रह्म यानी वेद या ज्ञान की रक्षा के लिए यह लिपि निर्मित की गई इसलिए ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी के उद्गम को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। अनेक विद्वान उसका उद्गम चीनी यूनानी आदि दूसरी लिपियों से मानते हैं और कई विद्वान ऐसे भी हैं जो उसे किसी दूसरी लिपि से उद्भूत न मानकर भारत की अपनी लिपि मानते हैं। पक्ष विपक्ष के सभी तर्कों की परीक्षा कर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने बड़ी विचक्षणता से यह प्रमाणित किया है कि ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तोभावेन भारतीय लिपि है और उसका संबंध किसी दूसरी लिपि से नहीं जोड़ा जा सकता। इन्वर्टेड कामा, मनुष्य की बुद्धि में सबसे बड़े महत्व के दो कार्य भारतीय ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली के अंकों की कल्पना है। इस 20वीं शताब्दी में भी हम संसार की बड़ी उन्नतिशील जातियों की लिपियों की तरफ देखते हैं, उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाई जाती। कहीं तो ध्वनि और उसके सूचक चिन्ह अक्षरों में साम्य ही नहीं है, जिससे एक ही चिन्ह से एक से अधिक ध्वनियां प्रकट होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्हों का व्यवहार होता है और अक्षरों के लिए कोई शास्त्रीय क्रम नहीं। कहीं लिपि वर्णनात्मक नहीं किंतु चित्रात्मक ही है। ये लिपियां मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दिशा की निर्माण स्थिति से अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकी, परंतु भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्च कोटि को पहुंच गई थी कि उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती। इन्वर्टेड कामापन। ब्राह्मी का संबंध चीनी, यूनानी, अरबी, सामी, फिनिशी, मिस्री, असीरिया के किलाक्षरों तथा आदि किसी अज्ञात दक्षिणी लिपि से माना गया है। इतनी लिपियों से ब्राह्मी का संबंध जोड़ना इस बात का सूचक है कि यह सब केवल अनुमान है, क्योंकि तत्व में एक रूपता रहती है और अनुमान में अनेक रूपता। इसके मन में जो आया उसने अनुमान कर लिया और एक मौलिक बात कहने का श्रेय लेना चाह। ब्राह्मी की भारतीयता। पहला, चीनी से ब्राह्मी का उद्भव मानना मनोरंजक कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि चीनी से ब्राह्मी उत्पन्न हो सकती है तो बालू से तेल भी निकल सकता है, आम के पेड़ में अंगूर भी फल सकता है। जब जन्य और जनक में किसी साम्य का विचार ही नहीं करना है तो किसी वस्तु की उत्पत्ति किसी वस्तु से बताई जा सकती है। चीनी आज भी एक प्रकार से चित्रलिपि है, उससे ब्राह्मी जैसे पूर्ण वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि का उद्भव मानना बुद्धि विरुद्ध है, जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें उसका कुछ अंश रहता है। ब्राह्मी में चीनी का क्या अंश है? दूसरा, सामी से ब्राह्मी को उत्पन्न मानने वाले भी तर्क से अधिक पूर्वग्रह से काम लेते दिखाई देते हैं। सामी दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसके संकेत अधूरे और अपर्याप्त हैं, वर्णों की संख्या केवल 22 है, उससे स्वर और व्यंजन का बेढंगा मिश्रण है। सामी की इन चार विशेषताओं में किसी एक की भी समता ब्राह्मी में नहीं पाई जाती। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसके संकेत पूर्ण और व्यापक हैं, वर्णों की संख्या 63-64 है, सामी के प्राय त्रिगुणी। स्वर व्यंजन का विन्यास पूर्ण ही नहीं वैज्ञानिक भी है, स्वर अलग व्यंजन अलग, स्वरों में भी पहले मूल स्वर तब संयुक्त स्वर, व्यंजनों का स्थान और प्रयत्न के अनुसार, ऐसा वैज्ञानिक वर्गीकरण जो आज भी संसार ये किसी लिपि में नहीं है। इस विशेषता को देखकर मैकडोनल्ड को अनिच्छापूर्वक भी ब्राह्मी की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी है। तीसरी, ग्रीक, सामी आदि लिपियों से ब्राह्मी लिपि का इतना स्पष्ट आकृति भेद है कि दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया भी जाए तो वह बादरायण संबंध के अतिरिक्त और कुछ न होगा। जो देश भाषा संबंधी विश्लेषण का उच्चतम रूप प्रस्तुत कर सकता था वह क्या अपनी भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए उपयुक्त लिपियों का निर्माण नहीं कर सकता था? ओझा जी ने ठीक ही कहा है कि उच्चरित अक्षर और लिखित वर्ण के संबंध को निभाने के उद्देश्य का विचार करें तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है। ऐसी अपूर्ण और क्रम रहित लिपि को लेकर उसकी लिखावट का रुख पलट कर वर्णों को तोड़ मरोड़ कर केवल 18 उच्चारणों के चिन्ह उसमें पाकर बाकी उच्चारणों के संकेत स्वयं गढ़कर स्वरों के लिए मात्र चिन्ह बनाकर अनुस्वार और विसर्ग की कल्पना कर स्वर व्यंजन को पृथक कर उन्हें उच्चारण के स्थान और प्रयत्न के अनुसार नए क्रम में सजाकर सर्वांग पूर्ण लिपि बनाने की योग्यता जिस जाति में मानी जाती है, क्या वह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केवल 18 अक्षरों के संकेत के लिए दूसरों का मुंह न ताक कर उन्हें स्वयं ही अपने लिए बना ले? चौथा, जो देश सबसे वैज्ञानिक अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली का निर्माण कर सकता था, जिसे आज सारा सभ्य संसार अपनाए हुए है, वह अपनी लिपि का निर्माण करने में असमर्थ था, यह कहने के लिए असाधारण साहस चाहिए। पांचवा, भारतीय परंपरा कहीं नहीं कहती कि यह लिपि कहीं बाहर से लाई गई है। छठा, इस लिपि को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्माण भारतीय भाषा की ध्वनियों को ध्यान में रखकर किया गया था। संसार की किसी भी दूसरी लिपि में इतने ध्वनि संकेत नहीं है जितने ब्राह्मी लिपि में। सातवां, संस्कृत भाषा के संयुक्ताक्षरता को सम्यक अंकित करने की योग्यता भी ब्राह्मी की भारतीय उत्पत्ति सूचित करती है। आठवां, स्वर को मात्रा के रूप में जोड़ने की विशेषता ब्राह्मी के अतिरिक्त किसी दूसरी लिपि में नहीं पाई जाती। ब्राह्मी से विकसित आज भारत की सभी लिपियों में यह विशेष अक्षुण है। इन सारी वितंड की जड़ श्रुति शब्द है। वेद को श्रुति कहते हैं जिसका अर्थ है सुनना। श्रुति शब्द को लेकर यूरोपीय विद्वानों की कल्पना इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि भारत में लिपि थी ही नहीं। जिस देश में सुनकर ही ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा हो उसमें भला लिपि कैसे हो सकती है। और तब लिपि का अभाव प्रमाणित करने के लिए साध्य असाध्य सभी तरह के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने लगे। शास्त्र कंठस्थ रखा जाए इसे यह कहाँ सिद्ध होता है कि उसका लिखित रूप था ही नहीं या हो ही नहीं सकता। यह तो उस देश की अध्ययन प्रणाली की विशेषता थी कि ज्ञान को पुस्तकस्थ न छोड़कर उसे आत्मसात कर लिया जाता था और यह कांड श्रवण यानी श्रुति के द्वारा सुगमता से सिद्ध हो जाता था। एक छोटा सा शब्द कितनी महत्वपूर्ण वितंडा का आधार बन सकता है यह स्पष्ट है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने श्रम पूर्वक और सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि लिपि का उल्लेख या संकेत ऋग्वेद अथर्ववेद ऐतरेय ब्राह्मण शतपद ब्राह्मण तैतरीय संहिता ऐतरेय आरण्यक छांदोग्य उपनिषद यास के कृत निरुक्त पाणिनी अष्टाध्यायी ब्रह्मजाल सुत्त जातक कथा महाभारत कौटिलीय अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र आदि प्राचीन ग्रंथों और यूनानी पर्यटकों नियारकोस और मेगस्थनी आदि के वृत्तांतों में सर्वत्र मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मी का संबंध किसी विदेशी लिपि से जोड़ना अमान्य ठहरता है। आधुनिक समस्त भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है। यहाँ यह संदेह हो सकता है कि ब्राह्मी से विकसित होने पर लिपियों में इतना भेद कैसे हो गया कि आज एक लिपि का ज्ञाता दूसरी लिपि को नहीं पढ़ पाता। तो इस प्रश्न का समाधान भी वही है जो इस प्रश्न का कि एक ही मूल भाषा से विकसित होने पर अंग्रेजी रूसी हिंदी में इतना अंतर कैसे हो गया कि एक का बोलने वाला दूसरी भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पाता। विकास के क्रम में वस्तुओं का स्वरूप इतना बदल जाता है कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। जिसे हम बचपन में देखे होते हैं वही जब सयाना होकर एकाएक हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते। जब मनुष्य के सीमित जीवन में होने वाले विकास की यह स्थिति है तो भाषाओं या लिपियों के सुदीर्घ जीवन के परिवर्तन क्रम में एक रूपता की आशा करना असंगत है। लिपि में भेद के अनेक कारण होते हैं। पहला, लेखन सामग्री की भिन्नता। लिखने का आधार क्या है, लिखने किस वस्तु की है, स्याही कैसी है, इससे अक्षरों के निर्माण और विन्यास में अंतर आता है। प्राचीन युग में लिखने के आधार के रूप में ताड़पत्र भोजपत्र कागज कारपाश यानी रुई का कपड़ा कौशे यानी रेशमी कपड़ा काष्ठ पट्ट यानी लकड़ी की पट्टी चमड़ा पत्थर ईंट धातु यानी तांबा सोना चांदी पीतल लोहा इत्यादि काम में लाए जाते थे। लेखनी भी धातु सरकंडा मैंत आदि की होती थी। सिद्ध है कि जैसे अक्षर ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखे जा सकते हैं वैसे पत्थर ईंट आदि पर नहीं। पत्थर ईंट आदि पर उत्कीर्ण अक्षर आकार में बड़े होंगे, साथ ही उनके उत्कीर्ण करने का ढंग भी भिन्न होगा। इसके प्रतिकूल चिकनी सतह जैसे भोजपत्र कागज आदि पर लिखे अक्षर छोटे भी होंगे, सुडोल भी और साफ भी। जिन बातों को लोग स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे या जिनकी ओर जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे उन्हें पत्थर या ईंट पर उत्कीर्ण करते थे। किंतु पत्थर ईंट आदि का लिखित बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना योग्य नहीं हो सकती थी। उसके लिए लेख फलक का हल्का होना आवश्यक था। यह योग्यता ताड़पत्र भोजपत्र आदि में वर्तमान थी, इसलिए इनका उत्तरोत्तर प्रचार बढ़ता गया। प्रस्तुत में दिखाना यह है कि लेख फलक और लेखनी का प्रभाव अक्षरों की आकृति पर पड़ता है। जिस भाग में लेखन सामग्री सुलभ थी, उस भाग में अक्षरों की आकृति उसी के अनुकूल बन गई, स्वभावतः उनमें पार्थक्य आ गया। दूसरा, अक्षर की आकृति के निर्धारण में कलात्मकता का भी बहुत दूर तक हाथ रहता है। मनुष्य की दृष्टि केवल उपयोग पर ही नहीं रहती, वह उपयोगी वस्तुओं में भी सौंदर्य देखना चाहता है। अक्षरों में सौंदर्य लाने की भावना से भी उनकी आकृति में परिवर्तन हुआ। अक्षरों के विकास क्रम में से परिचित व्यक्ति इसे जानते हैं। रोमन के छापे के डी और लेखन में डी में जो अंतर है वह कलात्मकता के कारण ही है। लेखन के डी में जो मोड़ या घुमाव है वे उसे अधिक कलात्मक बनाने के उद्देश्य से ही लाए गए हैं। तीसरा, लेखन में त्वरा और सरलता लाने की भावना से भी अक्षरों की आकृति में परिवर्तन अपेक्षित होता है। लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लिखने में त्वरा भी होनी चाहिए। अक्षरों की रेखाएं भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सरलता से खींचा जा सके। इस दृष्टि से भी अक्षरों के रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। चौथा, लिपि में निश्चितता पर भी ध्यान रखना पड़ता है। एक ही संकेत में विभिन्न ध्वनियों का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी संकेत गढ़े जाते हैं उन्हें यथासाध्य अधिक से अधिक परस्पर असंकीर्ण रखा जाता है। पांचवा, कभी कभी दूसरी भाषाओं या लिपियों के प्रभाव से भी अक्षरों की आकृति में परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ फ्रांसीसी के संपर्क के कारण हिंदी में बिंदी लगाकर ख ख ग ज फ आदि ध्वनियां बना ली गई। क ख ग ज फ के परंपरागत रूप में यह परिवर्तन एक दूसरी भाषा के संपर्क के कारण ही हुआ। इस तरह लिपि के रूप परिवर्तन के अनेक कारण हैं और एक ही लिपि कालांतर में इनमें एक या अनेक कारणों से प्रेरित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है। अतः यदि ब्राह्मी का अनेक रूपों में विकास हुआ तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपियां। ओझा जी ने ब्राह्मी की दो श्रेणियां मानी है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली से निम्नलिखित लिपियों का विकास हुआ। पहला, गुप्त लिपि। इस लिपि का प्रचार भारत में ईस्वी सन की चौथी और पांचवीं शताब्दी में रहा। गुप्तवंशी शासकों के लेखों में प्रयुक्त होने के कारण इसे गुप्त लिपि कहा गया है। दूसरा, कुटिल लिपि। अक्षरों की आकृति कुटिल यानी टेढ़ी होने के कारण इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा। कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से माना जाता है और कुटिल लिपि से नागरी और शारदा लिपियों का विकास। तीसरा, प्राचीन नागरी। इसे दक्षिण में नंदी नागरी भी कहते थे। आठवीं नवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक प्रचलित थे। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि का विकास हुआ और पश्चिमी शाखा से महाजनी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी आदि लिपियों का। चौथा, शारदा। इस लिपि का प्रसार कश्मीर और पंजाब में पाया जाता है। शारदा लिपि से ही वर्तमान कश्मीरी और टक्की तथा गुरुमुखी लिपियां निकली हैं। पांचवा, बंगला। बंगला की उत्पत्ति प्राचीन नागरी से दसवीं शताब्दी के आसपास हुई। दक्षिणी शैली से निम्नलिखित लिपियों का विकास हुआ। पहला, पश्चिमी। यह लिपि दक्षिणी महाराष्ट्र, मैसूर के कुछ भागों में ईस्वी सन की पांचवीं शताब्दी के आसपास प्रयुक्त होती थी। दूसरा, मध्य प्रदेशी। यह लिपि मध्य प्रदेश, हैदराबाद के उत्तरी भाग और बुंदेलखंड में पांचवीं से आठवीं शताब्दी तक मिलती है। तीसरा, तेलुगु कन्नड़ी। यह लिपि मुंबई प्रांत के दक्षिणी भाग, हैदराबाद के दक्षिणी भाग, मैसूर तथा मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रचलित थी। पांचवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक इसके अनेक रूप भेद हुए। इसी से वर्तमान तेलुगु और कन्नड़ लिपियां निकली हैं। चौथा, ग्रंथ लिपि। यह लिपि मद्रास में प्रचलित रही। सातवीं शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी तक इसके अनेक रूपांतर हुए जिससे वर्तमान मलयालम और तुलु लिपियां विकसित हुई। तमिल में वर्णों की अपूर्णता के कारण संस्कृत के ग्रंथ ग्रंथ लिपि में ही लिखे जाते हैं। संभवतः संस्कृत ग्रंथों की लिपि के रूप में प्रयुक्त होने के कारण ही इसका नाम ग्रंथ लिपि पड़ गया। पांचवा, तमिल लिपि। तमिल लिपि का प्रयोग सातवीं शताब्दी से आज तक मिलता है। तमिल लिपि के अक्षर ग्रंथ लिपि से बहुत कुछ मिलते हैं। वस्तुतः तमिल भाषा के लिए तमिल लिपि का प्रयोग और संस्कृत के लिए ग्रंथ लिपि का प्रयोग तमिलनाडु में होता रहा है। छठा, कलिंग लिपि। कलिंग लिपि के लेख 7वीं से 11वीं शताब्दी तक मिलते हैं। इसके अक्षर प्रायः समकोण वाले। इसमें नागरी, तेलुगु, कन्नड़ी और ग्रंथ लिपियों का मिश्रण पाया जाता है। उपर्युक्त संक्षिप्त चर्चा से स्पष्ट है कि भारत की आधुनिक लिपियों का मूलाधार ब्राह्मी ही है। आधुनिक युग में ब्राह्मी से विकसित लिपियों और अतिरिक्त दो विदेशी लिपियां भी सीमित रूप से प्रयुक्त होती हैं और वे हैं रोमन और उर्दू। रोमन का प्रयोग अंग्रेजी शासन के समय से होने लगा और उर्दू का मुसलमानी शासन के कारण। रोमन केवल अंग्रेजी लिखने के काम में आती है और उर्दू उर्दू साहित्य लिखने के काम में। कुछ लोग मुद्रण आदि का सौकर्य ध्यान में रखकर भारतीय लिपियों के स्थान पर रोमन को अपनाने के आग्रही हैं। देवनागरी और रोमन के आपेक्षिक गुण दोष पर मैंने विस्तार से राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान नामक अपनी पुस्तक में विचार किया है। उसे यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संविधान द्वारा भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत के ग्रंथों के मुद्रण में देवनागरी का ही व्यापक प्रयोग होता रहा है। तीसरी बात यह है कि हिंदी क्षेत्र के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग मराठी और नेपाली के लिए भी होता है। चौथी यह कि उत्तर भारत की प्रायः सभी लिपियां देवनागरी के रूप भेद हैं और उनमें अत्यधिक साम्य है। इसलिए एक लिपि को जानने वाला दूसरी लिपि को आसानी से पढ़ सकता है। इन कारणों से देवनागरी का भविष्य उज्ज्वल है। यदि भारत की समस्त लिपियों के स्थान में देवनागरी को अधिष्ठित किया जा सके तो भाषा वेद को मिटाने में सबसे बड़ी सहायता मिलेगी। जैसा हमने ऊपर देखा है, भारत की सभी लिपियां मूलतः एक ही हैं, क्योंकि एक ब्राह्मी से ही उन सबका विकास हुआ है। देवनागरी उन आदर्शों पर खरी उतरती है जो किसी अच्छी लिपि के लिए आवश्यक होते हैं। आदर्श लिपि में निम्नलिखित बातों की अपेक्षा की जाती है। पहला, ध्वनि और लिपि में सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात जो बोला जाए वही लिखा जाए और जो लिखा जाए वही बोला जाए। दूसरा, एक ध्वनि का एक ही संकेत हो, अर्थात ध्वनि और उसके संकेत में निश्चितता हो। रोमन में एक ध्वनि के लिए अनेक संकेत काम में लाए जाते हैं, जैसे क के लिए के, सी, क्यू, सी के, सी एच। इसी तरह रोमन में एक संकेत से अनेक ध्वनियां व्यक्त की जाती हैं। उदाहरणार्थ एक, ए से 8 ध्वनियों का विवक्त करने का काम लिया जाता है जो इन शब्दों में विद्यमान है, जैसे रैट, बाल, मेनी, फेयर, मेड, वाज, स्टीवर्ड। इसी तरह उर्दू में एक ज के लिए जे, जाद, जो, जाल, ये 4 संकेत काम में लाए जाते हैं। स ध्वनि के लिए भी से, सिन, सात, 3 संकेत काम में लाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि एक संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यंजना और एक ध्वनि के लिए अनेक संकेतों का प्रयोग लिपि संबंधी बहुत बड़ा दोष है। देवनागरी इससे मुक्त है। तीसरा, आदर्श लिपि में किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आज संसार में जो लिपियां प्रचलित हैं उनमें यह गुण जितना देवनागरी में है उतना किसी दूसरी लिपि में नहीं। रोमन या उर्दू से इस दृष्टि से बहुत ही हेय हैं। रोमन में ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ आदि महाप्राण ध्वनियों अथवा अंग, इंग, अण आदि अनुनासिक ध्वनियों के लिए कोई संकेत नहीं है। यदि वांगमय अथवा यौच शब्द लिखना हो तो उसे न रोमन में लिख सकते हैं न उर्दू में। चौथा, लिपि को सुपाठ्य और संदेह रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक संकेत में दूसरे संकेत का भ्रम हो जाए। उर्दू के बिंदियों के कारण या जेर, जबर आदि स्वर की मात्राओं का प्रयोग न होने से पढ़ने में जो उलझन पैदा होती है उससे भी उर्दूदा परिचित हैं। उर्दू के संबंध में एक कहावत ही है कि खुदा से जुदा हुए एक नुक्ते के लिए। पांचवा, सौंदर्य की लिपि। सौंदर्य भी लिपि का एक महत्वपूर्ण गुण है। छठा, आधुनिक वैज्ञानिक युग में यांत्रिक सौकर्य अर्थात मुद्रण और टंकन की सुविधा भी लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता है। सातवां, आधुनिक युग गति और वेग का युग है, इसलिए लिपि में त्वरा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आशुलेखन की सुविधा जीवन का अनिवार्य अंग बन गई है। देवनागरी इन सभी शर्तों को अच्छी तरह पूरा करती है। दूसरी किसी भी लिपि की तुलना में यह निसंदेह अधिक वैज्ञानिक तथा निर्दोष है।